संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में भी वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। भगवान महावीर के अनुसार प्रत्येक आत्मा स्वयं भगवान है, स्वभाव से तो प्रत्येक आत्मा भगवान है ही। यदि वो स्वयं को जाने पहचाने और स्वयं में ही जम जाए रम जाए तो प्रकट रूप से पर्याय में भी भगवान बन सकता है। और वो भगवान बनने का उपाय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र है। रिक्शे वाले बालक के उदाहरण से अभी तक अपन यह बात सिद्ध कर चुके हैं कि यदि हमें ये पक्का विश्वास हो जाए कि हम स्वयं भगवान हैं तो हमारे जीवन में से असदाचार तो रहेगा ही नहीं, सदाचार नियम से प्रकट हो जाएगा। जैसे कि उस रिक्शा चलाने वाले बालक को जब यह पता चल गया कि बैंक में जो करोड़ों रुपया जमा हैं वो वास्तव में मेरे ही हैं, यह ज्ञान भी हो गया और ऐसा अंदर में विश्वास भी जागृत हो गया, श्रद्धान भी हो गया, उन रुपयों में अपनापन भी आ गया, तो जो पर्याय की दीनता है कि मैं गरीब हूं हीन हूं, ये भावना तो उसकी उसी समय निकल गई। यद्यपि बाहर से गरीबाई अभी भी दिखाई दे रही है, कुर्ता अभी भी फटा हुआ है, मकान अभी भी पुराना है, 10 साल से जिसकी मरम्मत नहीं हुई है, पुताई की बात तो बहुत दूर, फिर भी अंदर से दरिद्रता निकल गई है, दारिद्र की अनुभूति समाप्त हो गई है और मैं करोड़पति हूं, ऐसी अंदर में प्रतीति जागृत हो गई है और उसके माध्यम से अंदर में एक समझ लिए आनंद की कणिका भी जग गई है। ऐसे ही जब ये भगवान आत्मा ये जान लेता है, ये मान लेता है कि मैं स्वयं भगवान हूं और देह देवल में विराजमान पर देह से भिन्न, रागादि से घिरा हुआ होने पर भी रागादि से जुदा ऐसा चैतन्य तत्व मैं स्वयं हूं, जो अनंत आनंद का कंद हूं, ज्ञान का घन पिंड हूं, अनंत शक्तियों का संग्रहालय हूं, अनंत गुणों का गोडाउन हूं, तो पर्याय में से जो दीनता है हीनता के भाव हैं वे समाप्त हो जाते हैं और एक अतीन्द्रिय आनंद की कणिका जग जाती है, अंदर में एक संतोष का भाव प्रकट हो जाता है। यद्यपि उस बालक को अपने वे करोड़ रुपया प्राप्त करने का की जल्दी है, क्योंकि वे आएंगे तभी तो हालत में सुधार होगा, तभी तो सुख सुविधाओं की सामग्री जुटाई जा सकेगी, तभी तो ये दरिद्रता की जो निशानियां पीछे लग रही हैं ये विलय को प्राप्त होंगी। फिर भी अधीरता नहीं है, क्योंकि अंदर में मैं करोड़पति हूं ऐसी शक्ति सामर्थ्य बल प्रकट हो गया है। ऐसे ही आत्मज्ञानी धर्मात्माओं को यद्यपि संयम धारण करके शीघ्र ही केवल ज्ञान दशा, अनंत आनंद की दशा, सिद्ध दशा प्रकट करने की भावना है, क्योंकि उसके बिना पर्याय की पामरता पूरी तरह जाएगी नहीं। और ये संसार में कि जो शेष प्रतिकूलताएं हैं वे भी जाएंगी नहीं, फिर भी उनके हृदय में उसके लिए अधीरता नहीं है, आकुलता नहीं है, अनावश्यक जल्दी नहीं है। यदि अनावश्यक देरी नहीं है तो अनावश्यक जल्दी भी नहीं है, क्योंकि उसे पक्का भरोसा है कि समय पर ये काम अवश्य होगा। जैसे कि उस बालक को भरोसा हो गया है कि जब मेरे पैसे बैंक में जमा हैं तो वे अवश्य ही एक ना एक दिन मेरे हाथ में आएंगे आएंगे और आएंगे, भले ही देर हो पर अंधेर नहीं। ऐसे ही जिस ज्ञानी धर्मात्मा को ये प्रतीति अंदर में जागृत हो गई कि मैं स्वयं भगवान हूं स्वभाव से, तो उसे भी अंदर से विश्वास जागृत है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वर्षों लगने वाले नहीं हैं। वो परम पवित्रता, वो अनंत सुख, अनंत अतीन्द्रिय आनंद और केवल ज्ञान की किरण नियम से पर्याय में भी फूटेगी, फूटेगी और फूटेगी, भले ही एक दो चार भव लग जाएं। इस अनंत संसार के सामने दो चार भव की क्या कीमत है? मान लो कि वो बालक को पैसे प्राप्त होने में महीने दो महीने भी लग जाएं, दिन दो दिन की बात तो जाने दो, तब भी इतनी लंबी जिंदगी के सामने महीने दो महीने क्या मायना रखते हैं? ऐसे ही अनंत संसार के सामने यदि दो चार भद्दी लग जाएं केवल ज्ञान की प्राप्ति में, पूर्ण पर्याय में परमात्मा बनने में, तो भी कोई अधीरता और आकुलता का काम नहीं है, क्योंकि अंदर से ये विश्वास जागृत हो गया है उस बच्चे को भी कि ये पैसा मेरा है और मुझे मिलेगा, मिलेगा और मिलेगा। ऐसे ही मैं स्वयं भगवान हूँ स्वभाव से और पर्याय में भगवान बनूंगा, बनूंगा और बनूंगा, ऐसी प्रतीति से आकुलता सर्व प्रकार की समाप्त हो गई है। इतना होने पर भी एक रिक्शे वाला बैंक में जाए और बैंक वाले उसे निकाल के करोड़ रुपया दे दें, ये इतना संभव भी नहीं है, इतना आसान भी नहीं है। विशेषकर उस देश में कि जिस देश में सरकारी काम कैसे होते हैं हम और आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। एक आईएएस ऑफिसर थे, वो रिटायर्ड हुए, बच्चे अमेरिका में रहते थे, इसलिए चार महीने की छुट्टी लेकर सीधे अमेरिका चले गए। जब चार महीने बाद लौट के आए तो अपनी पेंशन लेने गए सरकारी स्कूल में, कार उसमें ऑफिस में, वे सरकारी पेंशन के डिपार्टमेंट के ही हेड थे और वहीं से रिटायर्ड हुए थे। जिस कुर्सी पर वो बैठा करते थे उस कुर्सी पर उनका ही असिस्टेंट बैठा हुआ था। जब उनने खबर भेजी अंदर तो कहा साहब बिजी हैं। एक घंटा के इंतजार के बाद उन्हें समय मिला, तब उन्हें मालूम पड़ा कि बाहर बैठने का मतलब क्या होता है। आप जानते हैं आईएएस ऑफिसर किसे कहते हैं? आपकी परिभाषा कुछ अलग होगी, मेरी कुछ अलग है। अंदर एकदम खाली बैठे हों, कुछ काम ना हो, तब भी जब तक बाहर वाले को एक आध घंटा इंतजार ना करा लें मिलने के लिए, तो समझ लेना वो आईएएस ऑफिसर ही नहीं है। लेकिन जब वो इंतजार खुद करना पड़ता है तो मालूम पड़ता है कि उसका क्या मतलब होता है। आखिर उनकी पेंशन मंजूर हुई और वे अपने ही उस क्लर्क के पास गए जो पहले उनके का ही क्लर्क था कि भाई ये मेरे पेंशन के पैसे दे दो। तो उसने कहा प्रमाण पत्र लाइए। कि किस बात का? कि मैं जिंदा हूं, कि मैं तेरे सामने खड़ा हूं, तो तेरे को भरोसा नहीं कि मैं जिंदा हूं? कि साहब मैं क्या करूं, गवर्नमेंट का कानून है, कि जिंदा होने का प्रमाण पत्र पेश करे उसे पेंशन दे देना। ऐसा कैसे क्यों है कानून? कभी कोई मरा आदमी पेंशन ले गया होगा, इसलिए उन्होंने कानून बना दिया। क्यों? कि जिंदा होने का प्रमाण पत्र पेश करे और पेंशन ले जाए। तो उसने कहा कि मैं तेरे सामने खुद खड़ा हूं ना जिंदा, तू मुझे जानता नहीं, मैं तेरा ही ऑफिसर हूं। कि साहब आप तो खड़े हैं, लेकिन वो सर्टिफिकेट तो मुझे इस फाइल में लगाना पड़ेगा वाउचर के साथ, मैं आपको फाइल में लगा दूं क्या? बेचारे गए डॉक्टर के पास 150 रुपया देकर और जिंदा होने का प्रमाण पत्र बनवाया, लाकर उसे पेश किया अगस्त के महीने में, तो उसने अगस्त की पेंशन थमा दी। कहा जुलाई की, जून की, मई की, कि प्रमाण पत्र लाइए। कि किस बात का? कि जिंदा हूं। कि अरे मूर्ख, अगस्त में जिंदा हूं तो जुलाई में मर गया होऊंगा क्या? तेरी समझ में इतनी बात नहीं आती है? कि नहीं आती बाबूजी, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे तो हर महीने के वाउचर के साथ अलग अलग प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा ना, डॉक्टरों का धंधा कैसे चलेगा नहीं तो फिर सर्टिफिकेट बनाने वाले डॉक्टरों का, जिनकी डॉक्टरी नहीं चलती है वे सर्टिफिकेट बनाया करते हैं, उससे ही धंधा चलाते हैं। ऊपर गांधी जी की फोटो लगी थी आशीर्वाद देते हुए, तो बोले भाई तेरी समझ, ऊपर गांधी जी बैठे हैं, जरा तुम सोच, तेरी समझ में इतना नहीं आता है, अगस्त में जिंदा था जुलाई में मर गया होऊंगा। बोले बाबूजी, ना मेरी समझ में कभी आया है ना कभी आएगा। कि गांधी जी कि क्या कह रहे हैं गांधी जी आप बताओ ना? वो गांधी जी कह रहे हैं कि 5 का नोट यहां रखो, अभी मेरी समझ में आ जाएगा, क्योंकि आज तक बिना 5 के नोट की मेरी समझ में ना आया है और ना कभी आएगा। आखिर साहब को 5 का नोट वहां रखना पड़ा और उसको पेंशन मिली। जिस देश में एक IAS ऑफिसर को अपने ही ऑफिस में अपने ही क्लर्क की पूजा किए बिना अपनी ही पेंशन नहीं प्राप्त हो पाती हो, ऐसे इस महान देश में एक रिक्शे वाला जाएगा और बैंक में कहेगा मेरे 10 करोड़ रुपया जमा है और मुझे दे दो, इतनी आसानी से मिल जाएंगे? पूछा जाएगा व्हाट इज द प्रूफ, इसका क्या प्रमाण है कि तुम ही वो सुरेश हो जिसके पैसे हमारे यहाँ जमा हैं? कि साहब आपने बुलाया है अखबार में विज्ञापन देके, टीवी पर विज्ञापन देके, कि वो तो ठीक है, वो तो हमारी ड्यूटी है, क्यों, वो तो हमारा कर्तव्य है, उसके बिना ये 10 करोड़ रुपया हम सरकारी खजाने में जमा नहीं करा सकते हैं खाना पूर्ति किए बिना, लेकिन तुम्हें चाहिए है तो इस बात का प्रमाण देना ही पड़ेगा। और एक साधारण आदमी को ये प्रमाण पेश करना भी आसान काम नहीं है, और माने ना माने वो साहब के हाथ में है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि वो करोड़ों रुपया स्वयं के होते हुए भी उन्हें प्राप्त करना, हाथ में आना एक साधारण बात नहीं है। ऐसे ही मैं स्वयं भगवान हूं, ऐसा होते हुए भी उसकी श्रद्धा, प्रतीति, विश्वास ये सब हो जाने पर भी ये काम इतना आसान नहीं है कि पर्याय में भी सर्वज्ञता प्रकट हो जाए। उसके लिए अभी कितने उग्र पुरुषार्थ की आवश्यकता है इसकी कल्पना हमें नहीं है। लेकिन एक बात तो पक्की है कि जब पता चल गया है और अंदर से विश्वास भी जागृत हो गया है, तो कैसे ही सही कोई ना कोई रास्ता निकलेगा अवश्य, और वे पैसे भी हाथ में आएंगे आएंगे और आएंगे। ऐसे ही यद्यपि संयम धारण करना इतना आसान नहीं है, फिर भी एक दफे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र हो गया है, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान हो गया है, अंदर में प्रतीति दृढ़ हो गई है, तो संयम भी चारित्र भी जीवन में आएगा आएगा और अवश्य आएगा। थोड़ी देर लग जाए, देर है पर अंधेर नहीं, और उसे वो एक दिन पर्याय में परमात्मा बनेगा। इसलिए भाई स्वभाव से प्रत्येक आत्मा परमात्मा है, और वो परमात्मा बनने का उपाय भी अपने अंदर ही विद्यमान है। ये कितनी सहज और साधारण बात है कि प्रत्येक आत्मा स्वयं भगवान है, और उसके भगवान बनने का उपाय भी उसके अंदर ही विद्यमान है। उसका ही अवलंबन लेना है, उसको ही जानना है, उसको ही पहचानना है, और उसमें ही जमना रमना है। कभी कभी तो मैं ऐसा बोलता हूं कि एक कप चाय पीना कठिन है, पर आत्मा का अनुभव भगवान बनना सरल है। कैसे? ऐसे कि कल्पना करो कि आप यहां से अपनी कार में चले हैं और रास्ते में आपकी गाड़ी खराब हो गई, 10 किलोमीटर इस तरफ और 10 किलोमीटर उस तरफ कोई भी चाय की दुकान नहीं है। अब आपको चाय पीना है, तब एक कप चाय मिलना वहां कितना कठिन है। हमको चाय कठिन क्यों नहीं दिखती है? क्योंकि 24 घंटा हम घर में पीते हैं, आसानी से हमें प्राप्त हो जाती है, इसलिए हमें इसमें कोई कठिनाई नजर नहीं आती है। लेकिन उस कल्पना में आप विचार करो, क्योंकि आप घर से चाय लेके चले नहीं थे, जगह जगह दुकानें खुली हुई, जरूरत क्या है। अब वहां एक कप चाय चाहिए हो तो चाय चाहिए, दूध चाहिए, चीनी चाहिए, पानी चाहिए, स्टोव चाहिए, तपेली चाहिए, एक माचिस चाहिए। क्यों? ये इतनी सब सामग्री आप जुटा पाएंगे तब एक कप चाय आपको प्राप्त होगी। और यदि अभी आपको वहां सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, सम्यक ज्ञान प्राप्त करना है, सम्यक चारित्र प्राप्त करना है, भगवान बनना है, तो न स्टोव चाहिए, न तपेली चाहिए, न दूध चाहिए, न पानी चाहिए। क्यों? वहीं पद्मासन लगाकर बैठ जाइए, और जिस भगवान आत्मा के दर्शन करने का नाम सम्यक दर्शन है, वो आत्मा भी वहां मौजूद है, और जिस ज्ञान दर्शन की पर्याय को दर्शन करना है आत्मा का, वो पर्याय भी वहां मौजूद है। ध्यान का ध्येय परम आत्मा भी वहां मौजूद है, और ध्यान करने वाली पर्याय भी मौजूद है, इसलिए वहां कोई पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। ये पूर्ण स्वाधीन क्रिया है। भोगों की प्राप्ति वो अत्यंत पराधीन क्रिया है, वो पुण्य पाप के उदय के अधीन है, उसमें लौकिक की 50 बाधाएं मौजूद हैं, लेकिन आत्मा के अनुभव के लिए किसी भी पर पदार्थ की रंच मात्र आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपने ही आत्मा का ध्यान हमें स्वयं करना है, अपने ही आत्मा का ज्ञान हमें स्वयं करना है। इसमें क्या है? कहते हैं ना, तस्वीरे खुदा हृदय के आईने में है, जब चाही गर्दन झुकाई देख ली। क्या कठिनाई है बोलिए? क्या रमेश जी? तस्वीरे खुदा हृदय के आईने में है, जब चाही गर्दन झुकाई देख ली। खुदा की तस्वीर मेरे हृदय के दर्पण में है, यदि उसे देखना है तो गर्दन झुकाओ, देख लो। क्या कठिनाई है बोलिए? कहां जाना है? लेकिन मैं कहता हूं, जैन दर्शन के हिसाब से परमात्मा बनने का उपाय तो इससे भी ज्यादा सरल है। इसमें तो बहुत कठिनाई है। क्या कठिनाई है? चलो कोमल चंद जी। क्योंकि इसमें गर्दन झुकानी पड़ती है, ठीक है ना, गर्दन झुकाई देख ली। और कहीं गर्दन झुकाना इतना आसान है? जब कभी कभी हमारी गर्दन में दर्द हो जाता है, गर्दन अकड़ जाती है, तो उसके हिलाने में प्राण निकलते हैं, होता है ना ऐसा, तो झुकाना आसान है, और स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए तो और भी कठिन है। क्यों? गर्दन कटा सकते हैं पर गर्दन झुका सकते नहीं। ऐसे स्वाभिमानी व्यक्ति के भले ही गर्दन कट जाए, लेकिन किसी अज्ञानी मिथ्या दृष्टि आतियाई अन्यायी के सामने अपनी गर्दन नहीं झुकाने की प्रतिज्ञा जिनकी है, उनके लिए गर्दन झुकाना आसान है। इसलिए गर्दन झुकाना कोई साधारण काम नहीं है, एक बात। और दूसरी बात, इतना महान काम करें भी तो मिलेगा क्या? तस्वीर खुदा, खुदा की तस्वीर, खुदा के दर्शन नहीं होंगे। ख्याल में है ना? जैन दर्शन तो ये कहता है कि तेरा भगवान आत्मा, तेरा खुदा तू ही है, और उसके दर्शन करने के लिए गर्दन झुकाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने ज्ञान को ही झुका ले, अपने ध्यान को झुका दे तो तेरा काम हो जाएगा। इसीलिए तो हमारी जो ध्यान की मुद्रा है वो झुकी हुई गर्दन नहीं है। जितनी भी महावीर की मूर्तियां इस देश में मिलेंगी, आप मंदिरों में जाकर उनके दर्शन करके देख लीजिए, कोई भी मूर्ति की गर्दन झुकी नहीं होगी, कमर टेढ़ी नहीं होगी, क्यों? ना गर्दन झुकाने की जरूरत है, ना कमर मोड़ने की जरूरत है, अरे यहां तक कि पलक खोलने की भी जरूरत नहीं है। हमारी ध्यान की मुद्रा तो कैसी है? छवि बीत रागी शांत मुद्रा दृष्टि नासा पर धरें। तो जिसमें कुछ भी नहीं झुकाना है पर को, न पर को अपने में झुकाना है, सिर्फ अपने उपयोग को, ज्ञान को, दर्शन को, ध्यान को अपने आत्मा पर केंद्रित करना है, और इतने से काम से आत्मा परमात्मा बनता है। ये अत्यंत स्वाधीन, सरल और सहज क्रिया है। स्वभाव से तो आत्मा भगवान है ही, और पर्याय में परमात्मा बनने का जो उपाय है वो भी अत्यंत स्वाधीन होने से सरल ही है, कठिन नहीं। लेकिन इस जगत के अभ्यासी जीव को जो काम अत्यंत कठिन है वो तो सरल लगते हैं, और जो काम अत्यंत सरल है वो कठिन लगते हैं। मैं तो एक छोटे से गांव में पैदा हुआ हूं, जिस गांव में एक प्राइमरी स्कूल भी नहीं था। एक मास्टर जी थे, वो ट्यूशन से प्राइवेट पढ़ाया करते थे, और वो जमाना था कि जब बच्चों को स्कूल में लाने के लिए आसान काम नहीं था, किसान के बच्चे स्कूल में आते नहीं थे, तो हम चार विद्यार्थियों को भेजा जाता था, उसके हाथ पैर पकड़ के टांग के लाना पड़ता था। एक दफे हम ऐसे ही अभियान पर गए, तो वहां जब हमने किसान के बच्चे को आवाज लगाई तो वो अपनी मां से कह रहा था कि मां हल जोत खाऊंगा लेकिन पढ़ने नहीं जाऊंगा। उसको हल जोत के खाना कठिन लग रहा था और पढ़ने जाना सरल लग रहा था, पढ़ने जाना कठिन। हल जोतना समझते हैं, जमीन की पाटी पर हल्की नोक से लिखना और एक पेन पेंसिल से कागज पर लिखना, स्लेट पर लिखना उसे भारी लग रहा था। क्यों? क्योंकि उसने वो जन्म से देखा था अपने माँ बाप को हल में खेत जोतते हुए, और ये काम उसने देखा नहीं था। अभ्यास के कारण कोई चीज कठिन और सरल लगती है। हमें विषय कसाय का अभ्यास है इसलिए वो सरल लगते हैं, और आत्मा के अनुभव का, ध्यान का अभ्यास नहीं है इसलिए कठिन लगते हैं। लेकिन सचमुच देखा जाए तो आत्मा का ज्ञान ध्यान सबसे सरल काम है, और हम और आप कोई भी कर सकता है। इसलिए सभी लोग ऐसा प्रयत्न करें कि वे स्वयं परमात्मा बने, अपने आत्मा का ध्यान करके, अपने आत्मा का ज्ञान करके, अपने आत्मा का सिद्धांत करके। इसी मंगल भावना के साथ मैं अभी की बात समाप्त करता हूँ। ओम शांति शांति शांति।
जावाणी के ज्ञान ते सुझे लो कालो, सोवाणी मस्तके नमो सदा देते हैं।